Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. This is Akashvani. Good evening and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and related issues. You can, of course, call us on 2331-444-2342-1050 and 2331-0464. I'm Gaurandhavan Lal, and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra.
Namaskar, Shrotao. Karobari khabron ke saath Market Mantra hazir hai. Aaj ravivar hai, aur har ravivar ki tarah aaj bhi hum mutual fund se jude aapke sawalon ke jawab denge. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444 2342-1050 और 2331-0464. दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले स्टडी कोड 011 डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता. आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
जी, बहुत धन्यवाद.
पहले हेडलाइंस के साथ गौरव धवनलाल.
Thank you, Subodh and Ashutosh. Welcome to the program.
Thank you.
A quick look at the headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is rapidly making its mark in artificial intelligence, says world is praising our progress. Domestic markets to focus on Indian and global economic indicators and trade policy developments for cues next week. And global crude oil prices declined last week. Brent dips 0.5% to end below $75 per barrel.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत तेजी से अपनी छाप छोड़ रहा है और दुनिया हमारी प्रगति की तारीफ कर रही है. अगले हफ्ते देश के बाजारों को फोकस रहेगा भारतीय और वैश्विक आर्थिक सूचकों और व्यापार नीति से जुड़े फैसलों पर. और पिछले हफ्ते दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, ब्रेंट आधा प्रतिशत गिरकर $75 प्रति बैरल के नीचे आया.
We begin with our first headline story. Prime Minister Narendra Modi today stated that India is rapidly carving out a robust identity in the field of artificial intelligence. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi said the people of India are second to none in adopting and trying new technologies. He was pleased to note that the world praised India's progress in this sector during his recent visit to Paris for the AI Action Summit. Saying that people in the country are using AI for different tasks, Prime Minister Modi highlighted that the increase participation of youth is leading to new revolutions in various sector, be it space or AI. He expressed pride that the country witnessed the launch of ISRO's 100th rocket last month. The Prime Minister also noted with satisfaction that the participation of women is constantly on the rise among the team of space scientists, and also expressed happiness that the space sector has become a favourite of young people. With International Women's Day will be observed on the 8th of March, and Mr. Modi said that this is a special occasion to salute Nari Shakti. And we welcome and salute our first caller for the today. From Saharanpur, we have Vivek. Vivek, swagat hai, apna sawal poochhe please.
हाँ, मार्केट मंत्रा की पूरी टीम और आज के एक्सपर्ट को नमस्कार.
नमस्कार.
मेरा इस पर क्वेश्चन ये है कि मैंने SBI ब्लू चिप फंड ग्रोथ में 1000 का फिक्स किया है और मैं इसमें 7 ईयर्स इन्वेस्टेड हूँ और मुझे रिटर्न भी ठीक मिला है. क्या अभी इसका कुछ परफॉर्मेंस डाउन हुआ है तो क्या मैं आगे इसमें इन्वेस्टेड रहूँ? मेरा अभी भी होराइजन लगभग 10 ईयर्स अबव के लिए है. और साथ ही दूसरा क्वेश्चन है, मैंने निकॉन इंडिया मल्टी कैप फंड ग्रोथ में भी 1000 रुपीज का फिक्स किया है और मैं क्या मुझे अलग से स्मॉल या मिड कैप लेने की जरूरत है? और इसमें मेरा होराइजन 10 से 12 ईयर के लिए है. अगर मुझे कोई अलग स्मॉल मिड कैप फंड चाहिए तो उसके लिए राय दीजिए कौन सा बेस्ट होगा, या मैं इसी में ही मल्टी कैप फंड में ही टॉप अप करके जुड़ा रहूँ?
जी, तो पहला सवाल आपका SBI ब्लू चिप को लेकर, मेरे हिसाब से आप इस फंड में बने रहिए. बीच में एक टाइम था ऐसा जब इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन जरूर आई थी, लेकिन ये जो मंदी का दौर है इसने काफी अच्छे से परफॉर्म किया है. पिछले एक साल में ही अपनी कैटेगरी के टॉप 5 फंड्स में रैंक करता है. तो कुल मिलाकर एक अच्छा पुराना एक्सपीरियंस्ड मंझावा फंड है, और आपने खुद ही कहा कि आपको इसमें लाभ हुआ है. लार्ज कैप स्टॉक्स में निवेशित रहने के लिए ये एक बढ़िया विकल्प है, तो मेरे हिसाब से आप इसमें बने रहिए. आपने दूसरा फंड भी निपॉन का अच्छा चूज किया है, और बाय मैंडेट क्योंकि एक मल्टी कैप फंड है, कम से कम 25% आपका पैसा ये मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करना इसके मैंडेट में आता है. तो इस फंड में आपका 50% पैसा हमेशा ही मिड और स्मॉल कैप्स कंपनीज में लगा रहेगा. तो कुल मिलाकर मुझे नहीं लगता कि अगर आपको एक बहुत एग्रेसिव, अगर एक्स्ट्रा एग्रेशन आपको अपने पोर्टफोलियो में नहीं चाहिए, एक रीजनेबल कंट्रोल्ड एक्सपोजर चाहिए मिड और स्मॉल कैप्स के लिए, तो मेरा ख्याल आप इन दो फंड में अपना SIP बनाए रखिए, और खासकर इस मंदी के दौर में रुके नहीं. अगर फंड नेगेटिव रिटर्न भी देता है तो बहुत ज़्यादा निराश ना हो, धैर्य बनाए रखें और अपना SIP चलाए रखें.
जी, अगले कॉलर हैं हैदराबाद से सौरभ. सौरभ, स्वागत है आपका, सवाल पूछें.
गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा.
गुड इवनिंग.
आई थिंक माय क्वेश्चन इज आल्सो सिमिलर टू द प्रीवियस वन. आई हैड अ वेरी ट्रेडिशनल SIP पोर्टफोलियो ऑफ 20 मंथ्स व्हिच वाज गिविंग टिल लास्ट अक्टूबर अबाउट 10-12% प्रॉफिट. हाउएवर आई इंक्रीज इट लेटर at last year later stage, and now it is almost about 8-10% down. So I wanted to ask the market mantra expert, what should I do? Though I am fully convinced that I should continue, however I want to know from him. Thank you.
Yes, so you know, in response I'd say that if you are not looking to redeem this money, if you don't you know, for any important need require this money in the next 1-1.5 years, then by all means stay invested and continue investing. You know, by default, you know, by nature markets are volatile, they'll move up and they'll move down, but net overall basis they have the capability, they have the potential to reward you better than any other asset class. So if you are a long-term investor, keep calm and continue with your SIPs.
Meanwhile, we have a question, and I think it says, I'm a long-term investor investing since the past 10 years. What should I do in the current market volatility?
So my answer remains the same, which I just mentioned, that you know, volatile phases are a part and parcel of the market. The markets have been such that in the last 3-4 years, ever since COVID struck, you know, the big market fall, the rapid but short market fall that we witnessed at the time of COVID, since then you know, investors haven't really experienced a big market shakeup,
right?
And that's why a lot of new investors who have joined us you know, in these years, this is the first experience of a market fall that they are having. So they'll have to keep calm, they'll have to hold their nerve, remain patient and carry on with their SIP strategy.
Right, so Neeraj, if you heard the answer, stay cool, stay calm and stay invested.
जी, आशुतोष, अभी जो बाजार की हालत है, अभी जैसे कॉलर्स भी हमेशा यही आशंका जता रहे हैं कि क्या होने वाला है, कैसे होने और क्या करें ऐसे में. और हमेशा हम देखते हैं जो नए होते हैं निवेशक, उनको, उनके लिए ये बड़ा झटका होता है जिन्होंने अभी, जैसे मान लें हम कि 6 महीने में जिन्होंने निवेश शुरू किया होगा, या छोटे निवेशक हैं, खुदरा निवेशक हैं, तो उन लोगों को अभी क्या रणनीति अपनानी चाहिए? क्या ऐसी हालत में अभी अपना निवेश, जिनके लिए वो पैसा बहुत अहम है, तो अभी रोक दें और इंतज़ार करें, या उसको कम करके जारी रखें?
देखिए, मार्केट्स में, मार्केट कैन ऑलवेज गिव यू अ रीज़न टू फील डिसअपॉइंटेड और फील हैप्पी. यू नो, मार्केट्स विल गो अप. पीपल हु हैव नॉट इन्वेस्टेड और हैव इन्वेस्टेड लिटिल, वो लोग यू नो, रिग्रेट करेंगे कि काश हमने ज़्यादा पैसा लगाया होता. और अगर मार्केट लगाते ही नीचे गिरती है तो ऑब्वियसली एक रीज़न होता है निराश होने का. लेकिन इसका जो सोल्यूशन है वो एसेट एलोकेशन. आप अपना कुछ निर्धारित कर पैसा डेट में और इक्विटी में डिवाइड करें और एक एसेट एलोकेशन के माध्यम से लगाएं, जिससे जब भी मार्केट फॉल होती है तो आपको उतनी निराशा नहीं होगी. आपका पोर्टफोलियो हमेशा मार्केट से कम गिरेगा, और वो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज आपको मार्केट में बने रहने के लिए काफ़ी अहम भूमिका निभाता है, खासकर उन निवेशकों के लिए जो मार्केट के फॉल से थोड़ा हताश होते हैं. तो मार्केट का देखिए यही नेचर है, मार्केट किसी ऑब्लिगेशन में नहीं है कि आपने अगर 6 महीने पहले पैसा लगाना शुरू किया है तो वो ऊपर ही जाएगा। मार्केट की चाल को कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं पकड़ सकता। आप जरूर मार्केट की ये वेव्स जो होती हैं, आपको इनको राइड करने को मास्टरी यही है कि आप SIP के माध्यम से लगाते रहिए, अपने टाइम होराइजन पर, अपने रिस्क एपेटाइट पर फोकस कर अपने निवेश का चुनाव करें तो आपको जरूर लाभ होगा।
राइट, सो महेश वेलकम फ्रॉम दिल्ली, बट बिफोर वी टेक ऑन योर क्वेश्चन आई थिंक इट वुड बी इंटरेस्टिंग आफ्टर महेश's क्वेश्चन टू हैव अ शॉर्ट कॉन्वर्सेशन आशुतोष ऑन यू नो यू स्पोक अबाउट एंड दिस इज ऑफकोर्स डेट इज सीमिंग वेरी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग बट पीपल नॉर्मली एंटर द मार्केट फॉर लिटिल अग्रेसिव गेन्स, सो यू हैव टोल्ड अस लॉन्ग टर्म which is balanced, but what if there is an aggressive investor outside? But before we take that on, Mahesh, welcome, please ask your question.
Yeah, good evening. Sir, actually I have a lump sum amount of around 20 lakhs in hybrid aggressive, HDFC hybrid aggressive. So actually I want to do the in the same fund house to multi-cap STP. Flexi cap actually on a STP basis. Is it advisable or let it continue in the hybrid aggressive itself?
HDFC hybrid equity hybrid fund itself is a good fund. So, you know, if you want a little bit of conservative stance, you want about 20-25% of your money to be invested in debt, which brings some stability during market falls, then I don't see a reason that you should move out. With about 75-80% of your money in equity, HDFC equity hybrid is still very capable to give you good returns give you an opportunity to create genuine wealth with the market over the long term. And when the markets fall, it has the wherewithal to fall a little less than the market and thereby bringing some psychological comfort. So for all those benefits, for relatively conservative investors, hybrid funds are an excellent choice, and among them HDFC equity hybrid is one of the better options. If you want to move to an all equity portfolio, then multi-cap comes in. But I'd say that at this point in time, you'll also have to keep tax considerations in mind. So if you change from HDFC equity hybrid to a multi-cap, then you will be subjected to, all your investments will be subjected to long-term capital gain tax or short-term depending upon, you know, the tenure of your investment. And I think for a very nominal increase in your asset allocation from about 75% equity to kind of 100%. So I would rather suggest you stay invested in that fund, and for your incremental investments, you may go for HDFC multi-cap so that, you know, the tax incidence can be avoided and your portfolio will still predominantly remain equity heavy.
Right. So coming back to, and this was also linked to, you know, if you're quasi-aggressive in your stance. So wanting to understand from you that, you know, this is also a bad time, but it's also a good time. You know, it brings an opportunity also along with it. And people, if they're sitting on cash, as it's always adjusted, you know, suggested that when you're sitting, even if it's for a mutual fund, if it's not a SIP, but you want to go in for a one-time mutual fund, you're sitting on cash. What would your suggestion be that for an aggressive fund also, it's an opportunity because market is low and it is volatile, it could go lower. What would your suggestion be?
So I would suggest that even if somebody has a lump sum amount handy, which one needs to deploy, spread it out at least over 3 to 6 months because, you know, you don't know where is the bottom of this market fall.
Right.
And, you know, as we have seen and as typically is the case, the more aggressive funds, the mid caps and the small caps have fallen much more than large caps in this market fall. And right after your big lump sum investment, if the market again falls another 5-10%, it can be a source of panic for a lot of investors, and that is easily avoidable. So the best way is that even if you have a lump sum amount and you are an aggressive investor, even then spread it out over at least 3 to 6 months, if not more. The other thing I like to point out is that when in my framework of things, an aggressive portfolio is not a portfolio simply made up of mid or small cap funds. It's a portfolio which is the backbone of your portfolio should still be a flexi cap or a multi cap or a value fund. And on top of it, you can layer it with about 15-20% allocation to mid-cap and a small-cap fund each. And that portfolio itself, because your flexi-cap or your multi-cap fund itself will have some mid and small-cap allocation. And You know, if you have any urgent need for money, then these funds are relatively better off to you know, create some kind of liquidity should a need arise in an unanticipated way. So even an aggressive portfolio, I'd say, should only one should only look at mid cap, small caps funds in a supplementary role, and always go with flexi caps or multi caps or value funds for the core of their portfolio.
Right.
जी श्रोताओं को हम याद दिला दें कि आप सुन रहे हैं मार्केट मंत्र, और म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331444 2342 1050 और 2331044 दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आशुतोष, अक्सर हम बात करते हैं फंड का चुनाव जब करते हैं तो कई एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि आप उसका देखें कि उसके पीछे खर्च कितना है, TER जिसे आप कहते हैं, तो और कई बार हम ये भी देखते हैं कि हमने किसी फंड को चुना था लेकिन उसका TER बदल गया है अब, तो मतलब इससे छोटे निवेशकों को इसके लिए कितना चिंतित होना चाहिए कि कितना बदल गया तो हम छोड़ दें या बदल लें।
जी, सो TER का मतलब होता है टोटल एक्सपेंस रेशियो, जो कि जैसे आपने ठीक बोला कि ये एक फंड का खर्चा है जो वो आपका फंड मैनेज कर रहे हैं, तो उसके लिए जो सालाना बेसिस पे वो आपसे कितना चार्ज करते हैं। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो फंड आपको रिटर्न देता है, जब NAV डिक्लेयर होती है और NAV के माध्यम से आप किसी फंड के एक साल, तीन साल, पांच साल, दस साल के रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, तो वो इस खर्चे को हटाने के बाद होते हैं। तो अगर कोई फंड कहता है कि उसने आपको सालाना पिछले पांच साल में सालाना 15% रिटर्न दिया है, तो वो TER के बाद है। तो मैं ये कहूंगा कि TER डेट फंड्स में ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि वहां रिटर्न कम होते हैं तो खर्चों की अहमियत बढ़ जाती है। जो फंड कम चार्ज करता है तो एक वो उसको एडवांटेज होता है इन्वेस्टर्स के पास बेहतर रिटर्न्स के लिए। इक्विटी में भी ऐसा नहीं है कि TER को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन उसकी अहमियत थोड़ी कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि उसको फंड को मैनेज कैसे किया जा रहा है। अगर कोई बेहतरीन फंड है, अच्छे रिटर्न जनरेट कंसिस्टेंटली करने में सक्षम है, और थोड़ा बहुत अगर TER ज़्यादा भी चार्ज करता है, तो मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा घबराने वाली है, बहुत अलार्मिंग बात नहीं है। तो TER पे नज़र रखिए, लेकिन साथ में ये भी देखिए कि फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर खर्चा बढ़ रहा है और फंड परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है तो ये चिंता का विषय है।
जी, नांदेड़ से बालाजी हमारे साथ हैं। बालाजी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
हेलो बालाजी।
हाँ जी,
हाँ, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
हेलो
जी, अपना सवाल पूछे।
जय श्री कृष्णा, बालाजी गंगाराम।
जी जी, अपना सवाल पूछे। लगता उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे संपर्क टूट गया है। तो हम TER की बात कर रहे थे, तो अभी जैसे हम नए फंड के चुनाव पर भी हम बोलते हैं कि आप देखिए कि उसके खर्चे कितने, ये तो पुराना चलो जारी रखें हम, कोई अगर निवेशक है अच्छा परफॉर्मेंस है तो आप TER की फिक्र ना करें, लेकिन नए फंड के चुनाव पर जब आती है बात तो TER कितना होना चाहिए, इस पर हम बाद में बात करेंगे। एक और कॉलर अभी इंतज़ार कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं। ग्वालियर से मोहन हमारे साथ है। मोहन, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार,
नमस्कार।
को भी नमस्कार सर। मेरा अभी इन्वेस्टमेंट HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में जा रहा है। एक नया फंड हेलोस मिड कैप फंड NFO आया है, क्या उसमें एक एडिशनल SIP स्टार्ट की जाए? धन्यवाद।
जी, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज अच्छा फंड का आपने चुनाव किया है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप उसमें तो बने ही रह सकते हैं। बस थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि ये फंड काफ़ी बड़े साइज का हो गया है, तो अगर एक मिड कैप फंड होने के नाते बड़ा साइज का फंड चलाना काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन अभी तक ये फंड काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहा है, तो थोड़ा इसी बात पर ध्यान रखना होगा आपको, लेकिन अदरवाइज अभी ऐसा कोई चिंता का विषय मुझे नहीं दिखता है। दूसरा आपने बोला हीलियोस, जी एक काफ़ी पॉपुलर फंड मैनेजर समीर अरोड़ा, उन्होंने ये अपनी नई AMC बनाई है, हीलियोस एसेट मैनेजमेंट, जिसके तहत उनका ये फ्लैगशिप फंड है जो उन्होंने पिछले साल लॉन्च किया है। तो आप एक छोटी पोजीशन इसमें लेकर शुरुआत करना चाहते हैं कर सकते हैं, नया फंड है अभी, इसको और समय दीजिए। लेकिन फंड मैनेजर काफ़ी मंझे हुए हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, पहले अलायंस म्यूचुअल फंड के साथ इन्होंने फंड्स मैनेज किए, सिंगापुर में इन्होंने इनका एक हेज फंड है इनकी कंपनी का जो वो चलाते रहे हैं, और अब हिंदुस्तानी मार्केट्स में एज अ म्यूचुअल फंड इन्होंने वापसी करी है अपनी खुद की AMC बनाकर। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड इनका अलायंस के टाइम का शानदार है, और काफी पॉपुलर हैं, काफी जाने माने चेहरे हैं फंड मैनेजमेंट में, तो उस गुडविल के तहत और इनकी पास ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए अगर आप थोड़ा पोजीशन इसमें बनाकर शुरुआत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
जी आशुतोष, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, आपने बताया कि TER की परवाह किए बिना अगर अच्छा परफॉर्मर है कोई फंड तो आप जारी रखें, लेकिन नए निवेशक के लिए जब आप सलाह देते हैं कि आप देखें कि वो कितना खर्च है, तो एवरेज आप बता सकते हैं कुछ उदाहरणों से कुछ फंड्स के कि वो कितना एक्सपेंस रेशियो है किसका और किसे हम माने कि ये हमारे लिए ठीक है और ये नहीं है?
देखिए इक्विटी फंड्स की अगर मैं बात करूं जो कि अहम मुद्दा है यहाँ पर, इक्विटी फंड्स में डायरेक्ट प्लान्स में अगर आप निवेश करते हैं तो 1 से 1.25% आमतौर पर एक एवरेज आप एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान का मान सकते हैं। अगर इससे कम है तो बहुत अच्छी बात है, आपका फंड आपसे कम पैसे चार्ज कर रहा है, लेकिन
किफायती है।
अगर फंड बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, कंसिस्टेंट फंड मैनेजर है, तो आप मेरा ख्याल एक बढ़िया बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए अगर वो 1.25% तक भी आपको जाना पड़े प्रोवाइडेड द फंड इज गुड, तो मेरा ख्याल उसमें बहुत खासी चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। वहीं रेगुलर प्लान्स जो कि विद कमीशन होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आपको मिलते हैं, उनमें तकरीबन 1.25% के आसपास तक 2 से 1.25% एक्सपेंस रेशियो, यही जो 1% का डिफरेंस है 1.25 से 2 से 1.25 डायरेक्ट और रेगुलर में, यही डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन है जो 1% जो सालाना आपकी इन्वेस्टमेंट में से डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है। तो अगर आप ऑनलाइन खुद निवेश करने में सक्षम हैं तो आप डायरेक्ट प्लान चुनिए और एक्सपेंस रेशियो भी कम होगा, और एक्सपेंस रेशियो कम होगा तो आपके रिटर्न ज्यादा होंगे।
जी आइए अगली खबर पर नजर डालते हैं। लगातार 2 हफ्ते तक गिरावट के बाद उम्मीद है कि अगले हफ्ते भी भारत के शेयर बाजारों में सावधानी का रुख बना रहेगा। समझा जाता है कि सूचकांकों का फोकस भारत और अमेरिका के आर्थिक आंकड़ों, वाहनों की मासिक बिक्री, आयात शुल्क पर ट्रंप प्रशासन के कदमों और यूक्रेन और रूस के बीच शांति वार्ता से जुड़ी नई जानकारियों पर रहेगा। दुनिया भर की निगाहें 2024 की चौथी तिमाही के लिए अमेरिकी जीडीपी के आंकड़ों पर टिकी है जो 27 फरवरी को जारी होने वाली है। इसके अलावा चौथी तिमाही में उपभोक्ता व्यय, फरवरी के लिए उपभोक्ता विश्वास सूचकांक, नए घरों की बिक्री और जनवरी में निजी आय और व्यय के आंकड़ों पर भी बाजार पर असर पड़ने की संभावना है। अमेरिकी व्यापार नीति में चल रही गतिविधियों पर भी बाजार की निगाह रहेगी, साथ ही यूरोजोन ECB मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के नतीजों और जापान के खुदरा बिक्री के आंकड़ों पर भी फोकस रहने की संभावना है। देश में बाजार की निगाहें दिसंबर 2024 वाली तिमाही के GDP विकास के आंकड़ों और 28 फरवरी को वित्त वर्ष 2025 के लिए आर्थिक विकास के दूसरे अनुमान जारी होने पर टिकी रहेंगी। ऑटो क्षेत्र के शेयरों पर भी फोकस रहेगा क्योंकि अगले सप्ताह के अंत में हर तरह की वाहन कंपनियां फरवरी महीने के लिए बिक्री के आंकड़े जारी करेंगी। जनवरी में दोपहिया वाहन क्षेत्र का प्रदर्शन उत्साहजनक रहा था, लेकिन यात्री, वाणिज्यिक और ट्रैक्टर क्षेत्रों में मिला जुला रुख था।
So Ashutosh, I think market performance, a lot of conversations have happened and there is volatility, and but your expertise in is in mutual funds, and would want to just actually, you know, draw as much information from you as possible on this. Just a slight shift to an SWP. So there are some people, systematic withdrawal plan, and you know, a lot of experts, including you, have spoken about it. Many of our listeners are now more familiar with this term. Now, in an SWP, you can also have, you can withdraw at will. So when the market is volatile like that and you can manage without withdrawing, is it sensible to withdraw and then probably put it back in some way? Or is it better to keep sitting on that and say, I will hold my withdrawal for a couple of months or 2 months, because that much then the market would, the volatility would somewhere may adjust to it. How should they approach this market?
See, generally, SWPs are a good vehicle for regular income seekers, people who have built their retirement portfolio around mutual funds and they've reached their retirement stage and now looking to withdraw regular income, derive monthly income. So for them, SWP brings in a discipline, they can follow a plan and derive regular income, which can be fairly dependable. So for those kind of people, I would like to believe that stopping, their monthly withdrawals with the whims and fancies of the market may not be a very feasible way. But of course, if one has the flexibility to not withdraw at a time when the markets are falling, then certainly, you know, that would overall be return accretive.
Right. So not to worry too much as what will happen to my final this thing after, you know, the 15 years or 20 year period, not to look at that, but to say you need the money. It's okay, continue withdrawing because the market will even out.
Yes, over there the key is to be disciplined in your withdrawals. You know, we always recommend that don't let your withdrawals go beyond 6% of your accumulation, and ideally keep it up to 5%. As long as you're disciplined about how much you are withdrawing, even during phases of market fall, don't give yourself increment in the year when the markets are falling.
So this 0.5 and 0.6 is a good, you know,
5% or 6% should be your red line,
right,
for sustainability,
right,
of your corpus.
Right. From Delhi, we have a caller, Yogesh. Yogesh, welcome. Please ask your question.
थैंक यू सो मच आशुतोष जी की. मैं पहले तारीफ करना चाहूंगा कि इतने सटीक जवाब इन्होंने हमें दिए हैं और काफी कुछ सीखने को मिला है इनसे.
थैंक यू सो मच
सर. मेरा सवाल ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का तो बहुत बातें होती हैं. लोग फायर अमाउंट के बारे में बात करते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम रिटायर अर्ली. तो सर मेरा ये सवाल है कि सेफ विड्रॉवल रेट इंडिया में आपके हिसाब से कितना होना चाहिए और ताकि वो जो हमारा कॉर्पस है वो भी ईट आउट ना हो और इन्फ्लेशन को भी हम लोग बीट करके इंक्रीजिंग मतलब विड्रॉवल्स कर पाए.
जी, अगर मैं आपको थोड़ा इसको डिटेल में आंसर करूंगी कि ये काफ़ी अहम सवाल है रिटायरीज के लिए और ये काफ़ी काफ़ी बार देखा गया है कि लोग इस कश्मकश में भी रहते हैं और ये पूछते भी हैं. तो देखिए, अभी इससे पहले भी जो मैं गौरा जी से बात कर रहा था इसी पे हम चर्चा कर रहे थे कि मेरे हिसाब से आपका विड्रॉल रेट 5% ऑफ योर सालाना विड्रॉल रेट आपका जो इनकम के लिए है वो अगर आपका 5% से ऊपर ना जाए ऑफ योर टोटल एक्यूमुलेटेड कॉर्पस तो बेहतर है. और उससे ऊपर जाता भी है तो कोशिश करें 6% से ऊपर ना जाए, खासकर शुरू के सालों में जब आप रिटायरमेंट के बाद मंथली इनकम डिराइव करना शुरू ही कर रहे हैं. क्योंकि शुरू के सालों में अगर आप बहुत ओवरड्रॉ कर लेते हैं तो आपका कॉर्पस काफ़ी तेज़ी से डिप्लीट हो सकता है और इन लॉन्ग ईयर्स ऑफ रिटायरमेंट यू रन द रिस्क ऑफ पॉसिबली आउट लिविंग योर सेविंग्स. तो वैसी नौबत ना आए, आप शुरू में थोड़ा डिसिप्लिन से विड्रॉ करिए, कोशिश करिए 5% से ज़्यादा ना विड्रॉ करें. और इसके देखिए काफ़ी सिंपल रूल है, ये थंब ऑफ रूल हैं लेकिन मैं इनके पैमाने आपको बताता हूँ. एक रिटायरमेंट कॉर्पस में आप मानिए कि आप 40-50% अपना पैसा इक्विटी में रखेंगे और बचा हुआ डेट में रखेंगे. इस पोर्टफोलियो से अगर आप ओवरऑल लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 9-9.5% रिटर्न अगर जनरेट कर पाएंगे, 9-10% अगर आप रिटर्न जनरेट कर पाना मेरे ख्याल एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है. और उसमें से आप अगर हर साल 5% विड्रॉ करते हैं इनकम के लिए और बचा हुआ 5% छोड़ देते हैं उस कैपिटल को इंक्रीज होने के लिए, तो अगले साल आप अपने आप को थोड़ा इंक्रीमेंट दे पाएंगे. क्योंकि देखिए, अगर आपका काम आज की डेट में 50,000 रुपये प्रति माह मतलब 600,000 रुपये साल विड्रॉ करके चल जाता है तो 5 साल बाद वो 50,000 रुपये पर्याप्त नहीं रहेंगे. आपको अपना विड्रॉल बढ़ाना पड़ेगा. विड्रॉल आप तभी बढ़ा पाएंगे जब आपका कैपिटल अमाउंट बढ़ेगा ओवर द ईयर्स. तो ये ज़रूरी है कि जितना आप रिटर्न कमा रहे हैं आप सारा निकाल कर कंज्यूम ना करें, थोड़ा पैसा अपनी कैपिटल में वापस फ्लो बैक करें, जिससे कि आगे आने वाले सालों में इन लॉन्ग ईयर्स अगर 20-25 साल की अगर रिटायरमेंट फेज किसी का देखें तो उसमें आपका खर्चा शुरुआत से लेकर एंड तक में काफ़ी गुना बढ़ सकता है. तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप डिसिप्लिन से चलें और कुछ ये पैमाने अपने मान के चलें. 5% विड्रॉल रेट को एक आइडियल विड्रॉल रेट के चलें या उससे कम, तो मेरा ख्याल वो सस्टेनेबल होगा विद अ पोर्टफोलियो मिक्स ऑफ 50% इक्विटी एंड डेट.
So before we finally move to the closing moments of our program, we have a story on oil. Global crude oil prices declined last week as investors grappled with a fading Middle East risk premium alongside uncertainty about a potential peace deal in Ukraine. Brent crude oil futures fell 0.4% last week to end the week at $74.43 a barrel. US crude dropped 0.5% to close the week at $70.4 per barrel.
आशुतोष मार्केट मंत्र में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
जी, धन्यवाद आपका.
एब्सोल्युटली, थैंक यू आशुतोष. एंड लिसनर्स, बिफोर वी क्लोज, अ क्विक लुक एट द हेडलाइंस वंस अगेन. Prime Minister Narendra Modi says India's rapidly making its mark in artificial intelligence, says world is praising our progress. Domestic markets to focus on Indian and global economic indicators and trade policy developments for cues next week. And global crude oil prices fall last week. Brent declined 0.5% to end below $75 per barrel. And that's all for today's program. Namaskar. Oh,
मौजूद भरते